आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं। ये कक्षा आठवीं के विषय विज्ञान का चौथा अध्याय है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, पिछली क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, उसमें होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हैं, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया आप करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं, दो अभिकारक जो होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है कि उनमें से जो जगह होती है, एक दूसरे की जगह की अदला बदली हो जाती है, और इसीलिए इसको विस्थापन कहते हैं। मतलब कि जो भी दो अभिकारक आपने लिए हुए हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और अभिक्रिया करते हैं, और उसके वजह से, अभिक्रिया करने के वजह से, वो अपनी जगह की अदला बदली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गतिविधि 5 की थी, और गतिविधि 5 को करते करते हमने समझा था कि विस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से होती है। गतिविधि 5 में आपने क्या किया था, आपने एक परख नली ली थी, जिसको ग्लास ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। ये पतले लंबे ग्लास की तरीके से होता है। इसको आपने लिया था और इसमें आपने कॉपर सल्फेट का एक सल्यूशन बनाया था। सल्यूशन क्या होता है, सल्यूशन सिर्फ इतना होता है कि अगर आपके लैब में कॉपर सल्फेट के सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, मतलब कि अगर आपके लैब में, केमिस्ट्री लैब में आपके कॉपर सल्फेट के दाने पड़े हैं, आप उसको पानी में मिला दोगे, तो जो वहाँ पर सल्यूशन बन के तैयार होगा, उसे कॉपर सल्फेट का सल्यूशन कहेंगे। जो मिक्सचर होता है, घोल, घोल को ही इंग्लिश में सल्यूशन कहते हैं। तो जो आपने सल्यूशन तैयार किया होगा कॉपर सल्फेट का पानी में मिलाने के बाद, तो उसी घोल को आपको 5 मिलीलीटर माप लेना है, और उसको आपको एक परख नली में डाल देना है, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। और ऐसा करके आप लोग अपनी गतिविधि 5 का पहला स्टेप कर दोगे। उसके बाद जिस टेस्ट ट्यूब में, जिस परख नली में आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का घोल डाला हुआ है, उसमें आप लोगों को एक लोहे की कील डालनी थी। और लोहे की कील आपने कैसी ली थी, ऐसी लोहे की कील ली थी जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ है और वो बिल्कुल प्योर है, उस पर जंग नहीं लगी हुई है। ऐसी कील आपको लेकर के कॉपर सल्फेट के घोल में उसको डाल देना था। उसके बाद आपको कुछ देर तक उसे ऑब्जर्व करना था, थोड़ी देर आपको उसको वैसे ही छोड़ देना था। वहाँ पर कुछ रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के लिए आपको कुछ समय देना होगा, तो इसीलिए आप अगर उसको कुछ देर तक वहाँ पर छोड़ देंगे, तो उसके बाद आप ये देखेंगे, आप ये वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे कि जो लोहे की कील आपने डाली हुई है कॉपर सल्फेट के सल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के घोल में, वो लोहे की कील आपको देखने में लगता है कि उसके ऊपर कुछ परत सी जम गई है, उसके ऊपर आपको कुछ लेयर नज़र आती है, और ये लेयर आप लोगों को भूरे रंग की नज़र आती है। और ये जो लेयर है, ये किसकी है, ये कॉपर धातु की है, यानी कि तांबा, जो आपने तांबे का सोल्यूशन मिलाया हुआ था, कॉपर सल्फेट जो आपने लिया हुआ था, कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं, तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपने बनाया था, उसमें से कॉपर निकल करके, वो तांबा निकल करके क्या हुआ था, लोहे के कील के ऊपर उसने एक परत जमा दी थी, जिसके वजह से आप लोगों को दिखाई दिया था कि जो लोहे की कील थी उसके ऊपर एक भूरे रंग की लेयर चढ़ गई थी, एक परत चढ़ गई थी। साथ ही में जो आपने ये गतिविधि की होगी, गतिविधि 5, तब आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉपर सल्फेट का घोल होता है, जो कॉपर सल्फेट का सल्यूशन होता है, वो किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जो कॉपर सल्फेट के दाने होते हैं, वो भी नीले रंग के होते हैं, तो उसको पानी में मिलाने के बाद जो घोल बनता है वो भी नीले रंग का होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन हो जाती है, जब कॉपर सल्फेट के सल्यूशन में आप लोग एक लोहे की कील डाल देते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाती है, वहां कुछ ना कुछ अभिक्रिया हो जाती है, जिसके बाद आप ये नोटिस करते हैं, ये देखते हैं कि जो घोल आपने नीले रंग का तैयार किया था, उसका रंग चेंज होने लगता है, कलर चेंज होने लगता है। और हमने बात की हुई है कि केमिकल रिएक्शन कहीं पर हुआ हो, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी भी चीज की कलर चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जरूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो घोल है, उसका रंग नीले रंग से उसका रंग हरे रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ जाना है कलर चेंज होते ही कि वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और इतना समझ लेने के बाद कि ज़रूर वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, आपको आगे ये समझना था कि वो केमिकल रिएक्शन हुई क्या है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर हुई है। तो मैंने आपको समझाया था किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर हुई है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने दो चीज़ें ली थी जिनको आपने रिएक्शन करवाया था, जिनके बीच में आपने पहली ली थी लोहे की कील और दूसरी आपने कॉपर सल्फेट का घोल लिया है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है, मिलाने के बाद इनमें केमिकल रिएक्शन होने लगती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें क्या होता है इस रासायनिक अभिक्रिया में कि जो आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का घोल लिया हुआ है उसमें से कॉपर निकल करके, तांबा जो है उसमें से वो निकल करके वो लोहे की कील के ऊपर जम जाता है जा करके, और जो लोहे की कील होती है उसमें से लोहा निकल करके घोल में मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो लोहा है उसका काम था लोहे की कील में रहना, लेकिन वो लोहे की कील को छोड़ करके लोहा कहाँ आ गया, वो घोल में जाके मिल गया। और कॉपर सल्फेट में कॉपर को रहना था, लेकिन कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल करके लोहे की कील पर जाकर जम गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों ने अपने रोल बदल दिए, यहाँ पर दोनों ने अपनी जगह बदल दी। और इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें दो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अभिकारक जो होते हैं, अपनी जगह बदल देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में जो दो आप लोग अभिकारक लेंगे, इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में आपने कौन कौन से अभिकारक लिए हैं, एक लोहा लिया है और कॉपर सल्फेट का घोल लिया है। तो कॉपर सल्फेट के घोल में क्या मौजूद है, कॉपर सल्फेट के घोल में मौजूद है कॉपर यानी कि तांबा, और उसको आपने रिएक्शन करवाया है, उसकी अभिक्रिया करवाई है लोहे के साथ, लोहे की कील के साथ। तो जो लोहे की कील आपने ली थी उसमें लोहे का काम था कि वो लोहे की कील को बना करके रखे, वो लोहे की कील पर जमा रहे, लेकिन लोहे ने क्या किया, लोहे ने ये किया कि वो लोहे की कील से निकल करके कॉपर सल्फेट के घोल में चला गया, और कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर निकल करके लोहे पर जाकर जमा हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ने अपनी जगह बदल दी, और इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें जगह बदल दी जाती है दो अभिकारकों द्वारा रिएक्शन करते हुए, अभिक्रिया करते हुए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लोहा होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, मतलब कि इसमें कैसे होता है कि जो लोहा होता है, ऐसे समझ लो कि जो लोहा होता है वो बोलता है जाकर के कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कि तुम निकलो और मेरी सीट पे पहुंच जाओ और मैं तुम्हारी सीट पे पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि उकसा कौन रहा है, उकसा रहा है लोहा, यानी कि लोहा जो है उसमें ज़्यादा क्रिया करने की क्षमता है, तो वो बोलता है कॉपर को कि तुम मेरे सीट पर आ जाओ और मैं तुम्हारे सीट पर आ जाता हूँ, जगह की अदला बदली कर लेते हैं, और इस प्रकार करने की वजह से वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया नज़र आती है। साथ ही में बच्चों आप लोगों को यहाँ पर रिएक्शन भी करके दिखाई गई है, यहाँ पर पेज नंबर 42 में आप लोगों को रिएक्शन करके दिखाई गई है कि लोहे में किस तरीके से कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके क्या बनाता है FeSO4, जिसे क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं, और कॉपर अलग हो जाता है जो लोहे की कील पर जाकर जमा हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी आप लोग देख सकते हैं, उसको याद कर लेना। उसके बाद आगे हमने पढ़ा था किसके बारे में, आगे हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम लोगों ने गतिविधि 6 के जरिए समझा था कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। तो इस गतिविधि में, गतिविधि 6 में जो पेज नंबर 42 पर है, इसमें आपने क्या किया था, आपने एक कटोरी ली थी, कटोरी को कहते हैं चाइना डिश, जो लैब में रखी रहती है कटोरी जैसी होती है उसको चाइना डिश कहते हैं। तो आप लोगों ने चाइना डिश ली थी और उसमें आप लोगों ने एक कॉपर का चूर्ण डाल दिया था। कॉपर का चूर्ण कुछ नहीं है, कॉपर का पाउडर फॉर्म है, कॉपर जो होता है जो पाउडर के रूप में मिलता है लैब में, उसी को कॉपर का चूर्ण कह रहे हैं। तो अगर कॉपर के चूर्ण में आप लोग चाइना डिश में कॉपर के चूर्ण को डाल दोगे, उसके बाद आपने क्या किया था, इसको गर्म किया था बर्नर की मदद से, थोड़ी देर तक गर्म करने के बाद आपने ये नोटिस किया था कि जो कॉपर का चूर्ण आपने रखा हुआ है चाइना डिश में, वो गर्म होने के बाद वो कलर चेंज करके दिखाता है। आप लोगों को पता है कॉपर का किस तरह का कलर होता है, जो तांबा होता है उसको आपने देखा हुआ है। तो जो तांबे का चूर्ण है उसका भी कलर तांबे के जैसा ही होता है, लेकिन अगर आप तांबे के चूर्ण को गर्म करने लगते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है क्या, वहाँ पर आपको ये दिखता है कि जो कॉपर का चूर्ण आपने लिया हुआ है, तांबे का चूर्ण जो आपने लिया हुआ है, वो कलर चेंज करता है। कौन से कलर का हो जाता है? वो तांबे के कलर से चेंज करके ब्लैक कलर का हो जाता है, हल्का हल्का सा काला सा नजर आने लगता है ऊपर से। तो वहां पर आपको क्या समझ में आएगा, कलर चेंज होते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से इस वस्तु की, इस धातु की कलर चेंज हो रही है। तो जैसे ही आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि वहाँ ज़रूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, उसके बाद अगला आपको क्या काम करना है, अगला आपको ये काम करना है कि आपको समझना है कि रिएक्शन कौन सी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही आप लोग किसी भी सब्सटेंस को, मतलब कि कोई भी पदार्थ ले लो, सिर्फ कॉपर की बात नहीं की जा रही है, कोई भी पदार्थ ले लो आप लोग, अगर आप उसको रख करके कहीं पर खुले में रख करके अगर आप उसको हीट करते हैं, अगर आप उसको बर्न करते हैं, तो वो बर्न होते होते अगर वो गर्म होने लगता है, तो जैसे जैसे वो गर्म होते जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है, मतलब कि वो क्या करने लगता है, उसकी कोशिश होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लग जाए। जो भी हमारे वातावरण में गैस मौजूद है उसके साथ वो रिएक्ट करने लग जाए। तो अगर वो वस्तु रिएक्ट कर सकती है ऑक्सीजन के साथ में, तो वो रिएक्शन करके शो करेगी। और यहीं पर जैसे ही कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन शो करती है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में वहाँ पर अभिक्रिया होने लगती है, तो क्या बनता है, वहाँ पर बनता है ऑक्साइड, उस वस्तु का ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिया हुआ है, आपने यहाँ पर कॉपर लिया हुआ है और कॉपर को आपने गर्म किया, उसके बाद क्या बना, कॉपर जो है उसने रिएक्शन की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, और उसके बाद क्या बनाया उसने, उसने कॉपर का ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो उस वस्तु की ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर कॉपर ने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, इसलिए कॉपर की ऑक्साइड बनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, जो कॉपर है, तांबा है, उसमें ऑक्सीजन जाकर के जुड़ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और उससे जाके जुड़ जाता है, उस पदार्थ से जाकर के जुड़ जाता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को, अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको गतिविधि 6 में केवल कॉपर का रिएक्शन करके बताया गया है, और भी कोई सब्सटेंस होता है जैसे आयरन हो गया मान लो, अगर लोहा भी लोगे, लोहे को भी रिएक्शन अगर करा दोगे ऑक्सीजन के साथ में, तो वहाँ पर होगा क्या, जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पर ऑक्साइड बनेगा आयरन का। अगर आयरन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो वहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बनेगा, अगर कार्बन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो वहाँ पर कार्बन का ऑक्साइड बनेगा। तो जो भी वस्तु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है वो बाद में जाके ऑक्साइड बनाती है उसी वस्तु का, और हम उस प्रकार की अभिक्रिया को जिसमें ऑक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने के बाद में, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, दूसरा मैंने आपको बताया था जिसमें हाइड्रोजन निकलता है। तो हाइड्रोजन अगर निकालना है तो उस पदार्थ में पहले से हाइड्रोजन होना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था जो मीथेन होता है, मीथेन कैसे लिखते हैं, CH4 ऐसे लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन मौजूद है और उसको हमें निकालना है, और जैसे ही हम उसको निकाल देंगे, हाइड्रोजन को कार्बन से अलग कर देंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने कार्बन का ऑक्सीकरण करा दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकाल दिए जाते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण आपके पास दिया गया है पेज नंबर 42 पर, कि जो मीथेन होता है, मीथेन एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, इसको जब आप गर्म करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जैसे ही इसको देते हैं, तो ये टूट जाता है, ये विभाजित हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन में ये विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मीथेन जिसमें चार हाइड्रोजन थे उसमें से चारों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और कार्बन अकेला रह जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है किसी भी पदार्थ में से, उस प्रकार की अभिक्रिया को भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने इतनी ही बात की थी, हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की थी। अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, जिसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पहली बात मेरी ये सुन लो कि जो रिडक्शन रिएक्शन होता है ये करीब करीब उल्टा है किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। और इसको कैसे समझना है आपको, इसको ऐसे समझना है कि आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ से, किसी भी केमिकल पदार्थ से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, अगर उसमें ऑक्सीजन जाके चिपक जाए तो हम कहेंगे कि वहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है उस पदार्थ का। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर उल्टा होना है। तो अगर मान लो कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें पहले से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जैसे आप लोगों ने उदाहरण पढ़ा था कॉपर के ऑक्साइड का, कि कॉपर को गर्म करने के बाद अगर उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, अभिक्रिया कर ली, तो उसने कॉपर का ऑक्साइड बना दिया था। तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कॉपर का ऑक्साइड मौजूद है मान लो, तो आप लोग उस कॉपर के ऑक्साइड को क्या करोगे, अगर उसको हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन कराओगे, कॉपर के ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी और कॉपर बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जैसे ही आप लोग कॉपर के ऑक्साइड को रिएक्शन कराते हो, अभिक्रिया कराते हो हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो वहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं, दो चीज़ों का उत्पादन होता है, कॉपर का उत्पादन होता है और जल का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पहले आपने लिया तो था कॉपर का ऑक्साइड और बाद में जाके बन गया कॉपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉपर के ऑक्साइड में से कॉपर ऑक्सीजन ज़रूर निकल गया है, तभी तो बाद में जाके अकेला कॉपर बन गया है। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यहाँ पर जब ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये होती है अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडक्शन रिएक्शन। तो उल्टा समझना है आपको कि अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो वो अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, किसकी हो रही है, कॉपर के ऑक्साइड की रिडक्शन रिएक्शन बताई जा रही है कि अगर कॉपर का ऑक्साइड रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो वहाँ पर उसका रिडक्शन हो जाता है, उसका अपचयन हो जाता है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और निर्माण होता है केवल और केवल कॉपर का और जल का। तो ये तो हमने ऑक्सीजन के बारे में बात कर ली। दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीकरण दूसरा किस प्रकार से होता है, दूसरा आपने ये पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन निकल जाए किसी भी पदार्थ में से, किसी भी तरीके से, किसी पदार्थ में से, केमिकल रिएक्टेंट में से, रासायनिक पदार्थ में से, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तब भी हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण रिएक्शन हुई है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पर भी अब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोजन के बारे में किस तरीके से हम कहेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन हुई है, अपचयन अभिक्रिया हुई है। तो देखो, कोई भी पदार्थ अगर हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करता है और उसके बाद उसमें जुड़ जाता है हाइड्रोजन, पहले क्या हुआ था, हाइड्रोजन निकल रहा था, अब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है, तो भी हम कहेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। आपने ऑक्सीकरण में पढ़ा था कि हाइड्रोजन निकल रहा है, अपचयन में उल्टा होगा उसका, अपचयन में हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ जाती है किसी भी रासायनिक पदार्थ से, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर क्लोरीन की गैस के साथ में हाइड्रोजन की गैस रिएक्शन कर ले, अभिक्रिया कर ले, तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जिसे HCl ऐसे करके लिखते हैं। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है इसमें क्लोरीन की गैस और हाइड्रोजन की गैस के बीच में अभिक्रिया होने के बाद ही ये बना है, और हाइड्रोजन जाके जुड़ गया है क्लोरीन से, इसलिए हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन जुड़ गया है जैसे ही क्लोरीन से, तो क्लोरीन का वहां पर रिडक्शन हो गया है, क्लोरीन का वहां पर अपचयन हो गया है। यहाँ पर ये दोनों रिएक्शंस जिनके बारे में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ये आप देख सकते हो पेज नंबर 43 पर, आपको ऊपर ही दिए गए हैं। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ने के बाद में कॉपर बनता है और जल बनता है, और हाइड्रोजन की गैस और क्लोरीन की गैस रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएँ हैं ये दोनों की दोनों अभिक्रियाएँ जिनका उदाहरण है ये कहलाती हैं अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बता दी, आप लोगों को एक तो मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझाया है और एक आप लोगों को रिडक्शन रिएक्शन समझाया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन तब होगा अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा। रिडक्शन रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा तो कहेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। तो आप लोग एक बात समझो, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि अगर दो अभिकारक हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, तो उनमें से ऐसा होगा कि उनमें से किसी न किसी के पास, एक के पास ऑक्सीजन होगा दूसरे के पास नहीं होगा, तो उसमें होगा क्या कि जिसके पास ऑक्सीजन है वो दूसरे वाले को ऑक्सीजन दे देगा, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और पहले वाले के पास, जिसके पास ऑक्सीजन था उसने तो अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो उसके पास से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जब भी कभी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि केवल और केवल एक ही का ऑक्सीडेशन हो जाए चाहे एक ही का रिडक्शन हो जाए। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक अभिक्रिया में, एक रिएक्शन में, दोनों साथ में होते हैं। एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का उसी रिएक्शन में, उसी अभिक्रिया में रिडक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसी सेम रिएक्शन में एक प्रोडक्ट का, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा और दूसरे का अपचयन हो रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक सिंगल रिएक्शन है, एक अलग से रिएक्शन दी गई है रिडक्शन की और दूसरी दी गई है ऑक्सीडेशन की, ऐसा नहीं होता है। दोनों के दोनों रिएक्शन जो होते हैं किसी भी एक अभिक्रिया में दोनों साथ होते हैं, तभी जाके वो रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, तभी जाके वो अभिक्रिया पूरी हो सकती है। मैं आपको उदाहरण से समझा देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन हुई है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर देखो और बहुत ध्यान से सुनो और समझो कि जो ये कॉपर का ऑक्साइड है ये एक प्रोडक्ट है, एक पदार्थ है, और दूसरा पदार्थ क्या है, दूसरा पदार्थ है हाइड्रोजन की गैस। अब हमें इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी है। जो कॉपर की ऑक्साइड है उसके पास क्या है, उसके पास कॉपर मौजूद है, हाइड्रोजन जो है उसके पास ऑक्सीजन नहीं मौजूद है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो कॉपर का ऑक्साइड है उसके पास ऑक्सीजन मौजूद है तो वो ही दे सकता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वो दे नहीं सकता, वो ले सकता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो कॉपर का ऑक्साइड है उसने अपने ऑक्सीजन को दे दिया, तो जैसे ही उसने अपने ऑक्सीजन को अपने पास से हटा दिया तो वहां पर हम कहेंगे कि कॉपर के ऑक्साइड का अपचयन हो गया है, कॉपर के ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। और जैसे ही हाइड्रोजन ने कॉपर के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ले लिया तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन की गैस का ऑक्सीडेशन हो गया है, हाइड्रोजन की गैस का ऑक्सीकरण हो गया है। तो इस उदाहरण में आपको क्या समझ में आया कि एक प्रोडक्ट, एक पदार्थ क्या करता है, वो ऑक्सीजन को देता है और दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन को लेता है। हमेशा कभी भी कोई रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें यही होता है कि एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पदार्थ का रिडक्शन होता है। कभी भी सिंगल रिएक्शन नहीं होती है, ऐसी रिएक्शन नहीं होती है, ऐसी अभिक्रिया नहीं होती है जिसमें केवल और केवल रिडक्शन हो रही हो या फिर केवल और केवल ऑक्सीडेशन हो रही हो, दोनों की दोनों साथ में होती हैं एक ही अभिक्रिया के अंदर। और इस टाइप के रिएक्शंस जिसमें एक ही साथ में ऑक्सीडेशन हो रही है और एक ही साथ में रिडक्शन हो रही है, इस टाइप के रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या फिर ऑक्सी अपचयन अभिक्रियाएं, या फिर अपोपचय अभिक्रियाएं, ऐसे कहते हैं। ये तीनों नाम जो है ये रिडॉक्स रिएक्शंस के ही नाम है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं इन्हीं का नाम है। अलग अलग नाम यहाँ पर बताए गए हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कह सकते हैं, ऑक्सी अपचयन अभिक्रियाएं कह सकते हैं, या फिर अपोपचय अभिक्रियाएं कह सकते हैं। ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है सिंगल रिएक्शन के अंदर ही। तो यहाँ पर आपको रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा, और रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं वो समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, अगला टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कुछ और समझाना चाहती हूँ। वो समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो क्या होता है, जो ऑपोजिट नेचर की चीज़ें होती हैं उनको अगर आप लोग पास में लाते हो तो क्या होता है, वो ऑपोजिट नेचर की चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस कर जाती हैं। जैसे कि मान लो आपके पास बर्फ का गोला रखा हुआ है, या फिर आप लोगों ने बर्फ जमा करके रखी हुई है, फ्रिज में से आप लोग एकदम ठंडे बर्फ को निकालो और दूसरी कटोरी में आप लोगों ने मान लो रखी हुई है बिल्कुल गर्म, एकदम खौलता हुआ पानी रखा हुआ है। अगर आप क्या करोगे, आप पूरे ठंडे बर्फ को ले लोगे और खौलते हुए पानी को ले लोगे, दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या करेंगे, खौलता हुआ पानी जो है उसका अलग नेचर होता है, उसकी अलग गुण होते हैं, और जो गर्म एकदम खौलता हुआ पानी है उसको ले लेंगे अगर आप लोग, और बर्फ ले लेंगे, मान लो बर्फ जो होता है उसके भी अलग गुण होते हैं। तो यहाँ पर दो अलग नेचर की आपने चीज़ें ली हैं, दो अलग गुणों की आपने चीज़ें ली हैं, और उन दोनों को, ये दोनों ऑपोजिट है ना, जो ठंडा होता है उसका ऑपोजिट गर्म होता है। अगर आप लोग ऑपोजिट उल्टे नेचर की चीज़ों को मिला दोगे तो वहां पर क्या होगा, गर्म जो होगा वो ठंडे को नॉर्मल कर देगा। तो आप लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा, आप लोगों को परिणाम क्या मिलेगा, परिणाम में आप लोगों को एक नॉर्मल पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर दो ऑपोजिट नेचर की चीज़ें, दो उल्टे नेचर की चीज़ों को अगर हम मिला दें तो वहाँ पर वो नॉर्मल चीज़ बन जाती है, एक एवरेज चीज़, एक औसत वाली चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर भी हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में यही पढ़ेंगे। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं साइंस के अंदर में, केमिस्ट्री के अंदर में, कौन कौन सी होती हैं, एक अम्ल होता है और एक क्षारक होता है। दोनों ऑपोजिट नेचर की होती हैं, दोनों उल्टे नेचर की होती हैं। अम्ल का नेचर बिल्कुल उल्टा होता है क्षारक से, अम्ल जो होता है एसिड होता है, जो क्षारक होता है बेस होता है, बेस कहते हैं उसको, क्षारक को इंग्लिश में। और इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, बिल्कुल उल्टी होती हैं, बिल्कुल विपरीत होती हैं एक दूसरे के। जिस तरीके से आप लोग विपरीत, आप लोगों को बताए जाते हैं ना बचपन में विलोम शब्द, कि मोटे का विपरीत होता है पतला, या फिर लंबे का विपरीत होता है छोटा, तो इसी तरीके से अम्ल का विपरीत होता है क्षारक, बिल्कुल उल्टा होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर दो विपरीत नेचर की चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तो वो वहाँ पर एक न्यूट्रल चीज़ बना देती हैं, एक उदासीन चीज़ जो नॉर्मल होती है वो बना देती हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको ये समझना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको समझना है कि अगर आप लोग अम्ल को और क्षारक को, कोई भी अम्ल आप लोग ले लोगे और दूसरा आपको एक क्षारक ले लेना है, और अगर इनको आप मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा और एक लवण बनेगा। तो जो जल होता है वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है, वो कोई रिएक्शन नहीं शो करके देता, मतलब कि वो आपको एसिड की प्रॉपर्टी भी नहीं दिखाएगा और वो बेस की प्रॉपर्टी भी नहीं दिखाएगा और वो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो जो जल होता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, किसके मिक्सचर से, एसिड के यानी कि अम्ल के और क्षारक के मिक्सचर से जो जल बन रहा है वो क्या करता है, वो ऐसा होता है कि ना तो वो सारे की सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे के सारे गुण ना तो वो अम्ल के जैसे दिखाएगा, ना तो वो सारे के सारे गुण क्षारक के जैसे दिखाएगा, वो दोनों का एक मिक्सचर सा होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर दो बिल्कुल विपरीत नेचर की चीज़ें जैसे कि अम्ल और क्षारक को मिला दें तो यहाँ पर लवण बनता है और जल बनता है और गर्माहट भी पैदा होती है जरा सी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब भी कोई अम्ल, यहाँ पर अम्ल आपने क्या लिया है, HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, और कोई क्षारक, क्षारक आपने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। अगर इन दोनों को आप लोग निश्चित मात्रा में, एक मापी तौली मात्रा में अगर आप लोग इनको मिला देंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर लवण का निर्माण होगा, लवण बनेगा, उत्पाद जो होगा वो लवण का होगा, जल का होगा और ऊष्मा का होगा, ऊष्मा यानी कि गर्मी का होगा। और इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, जिसमें आप लोग एसिड को और बेस को यानी कि अम्ल को और क्षारक को मिलाते हो और उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है लवण और जल बनता है और ऊष्मा बनती है, इस टाइप के रिएक्शन को, अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछो कि रिएक्शन हुआ ही क्यों एसिड का और बेस का, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बता दिया कि जब भी दो विपरीत नेचर की चीज़ों को मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो वहाँ पर रिएक्शन हो जाती है और उसके बाद एक स्टेबल चीज़ बन जाती है, एक उदासीन चीज़ बन जाती है, न्यूट्रल चीज़ बन जाती है। अगर आप लोग डेली लाइफ में भी देखो, तो मान लो अगर दो ऐसे लोगों को साथ में रख दिया जाए जो जिनमें से एक बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो और दूसरा एकदम ही चुप रहता हो, तो वहाँ पर वो दोनों थोड़े दिनों बाद रहते रहते ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होता होगा, ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा चुप्पी होती होगी, वहाँ पर नॉर्मल आप लोगों को वातावरण दिखाई देगा। तो हमेशा ऐसा होता है कि दो ऑपोजिट नेचर की चीज़ों को, बिल्कुल विपरीत नेचर की चीज़ों को अगर पास में लाया जाए, उसको मिक्स किया जाए, तो वहाँ पर एक न्यूट्रल चीज़ बन जाती है, एक उदासीन, एक नॉर्मल चीज़ बन जाती है। तो वही यहाँ पर भी होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि अगर अम्ल को और क्षारक को, अम्ल और जो क्षारक होते हैं, इनका नेचर बिल्कुल विपरीत होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, अगर आप इनको मिला देंगे तो यहाँ पर जल बनेगी, ऊष्मा बनेगी और लवण बनेगी। जो ये लवण होता है इसको NaCl लिखते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखते हैं। लवण जो होता है, आप लोगों के घर में जो नमक आती है उसमें भी लवण मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ HCl का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण दिया गया है। और भी कोई अम्ल अगर आपके लेबोरेटरी में हो, अगर आपके लैब में हो, जैसे कि मान लो अगर आपके पास H2SO4 है, मतलब अगर सल्फ्यूरिक एसिड है आपके लैब में और दूसरा आपके पास रखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इनके बीच में भी रिएक्शन हो जाएगी। जो एसिड है यहाँ पर, जो अम्ल है, वो क्या है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे H2SO4 ऐसे भी लिखते हैं, और उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्षारक से। क्षारक क्या लेंगे, क्षारक फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और यहाँ पर इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Na2SO4, जिसको क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट कह सकते हैं। और ये जो सोडियम सल्फेट है, ये भी एक प्रकार का लवण है। तो ऐसा नहीं है कि लवण केवल और केवल NaCl को कहते हैं, ये एक प्रकार का लवण है। और दूसरे प्रकार का लवण जो मैंने अभी आपको बताया वो है Na2SO4। लवण को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या फिर सॉल्ट कह सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं समझना कि जो सॉल्ट होता है वो केवल और केवल वही वाला सॉल्ट होता है जो आप लोग घर में खाते हो। सॉल्ट का मतलब होता है कुछ, सॉल्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। Na2SO4 भी एक प्रकार का लवण है, NaCl भी एक प्रकार का लवण है, और भी अलग अलग लवण होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी कभी एसिड यानी कि अम्ल और क्षारक ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। और इन लवणों की क्या खास बात होती है, इन लवणों की खास बात ये होती है कि अगर आप इनको पानी में मिक्स कर दोगे, और वैसे अगर आप लोग कोई साफ पानी लोगे, फिल्टर वाला पानी लोगे, उसमें लवण नहीं होगा, ऐसा पानी अगर लोगे तो उसमें आपको बिजली पास नहीं करेगी। जैसे आप लोग उस पानी में लवण मिला दोगे, उसके बाद आप देखोगे कि उसमें बिजली पास करती है। तो ये जो लवण होते हैं ये बिजली पास कराने में मदद करते हैं, ये इनकी खास बात होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी के एक टॉपिक रह गया है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, और क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो पूरे चैप्टर का। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है कि आपने जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना है एक बार खुद से, और कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो आप लोगों को तो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछ लेना। बाकी की बात मैं अगली क्लास में बताऊंगी बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।